और कहने लगी थी, लेकिन मॉम, अभी तो मुझे पूरे 2 से 3 महीने बाकी थे पूरे बच्चे को पूरा होने में, तो फिर इतनी जल्दी? तब करिश्मा जी कहने लगी थी, वो जिन्नातों का वंशज है और वो अगले 7 दिनों के अंदर अंदर ही आएगा, वो भी पूर्ण चंद्रमा की रात। अब जैसे ही तारापरी ने ये सुना, उसका हैरानी के मारे बुरा हाल हो गया था। वो सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि उसका वंशज इतनी जल्दी दुनिया में आने वाला है, लेकिन अभी तो कालीपरी का खतरा उसके सर पर मंडरा रहा है। अगर उस कालीपरी ने उसके बच्चे के 15 दिनों तक शक्तियां ना होने पर उसके साथ कुछ कर दिया, तो लेने के देने पड़ जाएंगे और वो हमेशा हमेशा के लिए अपना वजूद खो बैठेगी। क्योंकि बात अब केवल जिन्नातों के वंशज की नहीं थी, बात अब पूरे परिलोक की थी। पूरे परिलोक की जिंदगी अब सिर्फ और सिर्फ उस बच्चे से जुड़ी हुई थी, जो बच्चा अब बहुत जल्द वहां आने वाला था। तब तारापरी ने आगे बढ़कर करिश्मा जी को गले से लगाते हुए कहा था, मॉम, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, तो आपको हमसे वादा करना होगा कि जब तक मेरा बच्चा पैदा नहीं हो जाता, आप मेरे आसपास रहेंगी। ना जाने मेरे अंदर से बुराई की शक्तियों मिटने में कितना समय लगेगा, क्योंकि जब तक मेरे अंदर बुराई की शक्ति रहेगी, तब तक मैं अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पाऊंगी। तो इसीलिए आपको ही अब मेरी मदद करनी होगी और मेरे आसपास रहना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे को किसी भी तरह की कोई परेशानी हो। इतना ही नहीं, कालीपरी का खतरा भी अभी मेरे सर पर मंडरा रहा है, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर हमें नहीं छोड़ेगी, और आपको इसमें मेरी पूरी मदद करनी होगी। और अमन सर को भी मेरे आसपास रखना होगा, क्योंकि अमन सर ही हैं जो कि मुझे इस वक्त उस कालीपरी से बचा सकते हैं। कहने को तो वो कालीपरी मेरी बड़ी बहन है, लेकिन असल में वो मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। तभी करिश्मा जी ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा था, मेरी बेटी, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं भी देखती हूँ कि कौन काली परी और कौन सफ़ेद परी मेरे बहू का बाल भी बाका करती है। मैं तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगी। ऐसा कहकर उन्होंने तारापरी को गले से लगा लिया था। और तभी तारापरी अपने कमरे में जाने लगी थी, क्योंकि इस वक्त उसे आराम की सख्त ज़रूरत थी और मन ही मन में सोचने लगी थी कि आखिरकार अब ऐसा क्या किया जाए जिसके बाद अमन हमेशा हमेशा के लिए उसी की बात सुने। वहीं दूसरी ओर सोनल परी का नृत्य कार्यक्रम अपने जोरों शोरों पर था, और वहीं काली परी ने जल्दी ही एक इंसानी रूप ले लिया था, क्योंकि जब तक वो इंसानी रूप नहीं ले लेती, तब तक वो अमन के पवित्र बगीचे में एंट्री नहीं कर सकती थी। लेकिन अब उसने जल्दी ही एक बड़ी ही खूबसूरत सी लड़की का इंसानी रूप ले लिया था और सीधा वो अमन के बगीचे में जा पहुंची थी। हालांकि जिन महाराज यानी कि दादा महाराज को इस बात के बारे में एहसास हो गया था कि इस वक्त कोई बुरी शक्ति यहाँ मौजूद है, लेकिन वो इंसानी रूप में थी तो चाहकर भी जिन महाराज उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे, क्योंकि इंसानों पर वार करना उनके कानून के सख्त खिलाफ था। वेल, जैसे ही अब काली परी वहां गई, उसने अपने चारों ओर अच्छी तरह से देखना शुरू कर दिया था, लेकिन उसे सोनल परी और बाकी की परियां दिखाई नहीं दी थीं, और उसे अक्षत खुराना सरोवर के पास बैठा हुआ दिखाई दे गया था। और वैसे भी उसका निशाना तो सिर्फ और सिर्फ अक्षत खुराना था, तो इसीलिए वो सीधा अक्षत के सामने चली गई थी। और अक्षत इतनी सुंदर लड़की को अपने पास देखकर चौंक गया था, क्योंकि अब अगली सुबह हो चुकी थी और परियों का नृत्य कार्यक्रम ऐसा ही चल रहा था। वहीं सोनल परी ने नृत्य करते हुए जैसे ही किसी अनजान लड़की को अक्षत के पास देखा, तो वो उसे देखते ही समझ चुकी थी कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि काली परी ही है। और अब सोनल परी को नृत्य कार्यक्रम करते हुए दूसरा दिन चल रहा था, एक दिन उनका पूरा हो चुका था। अब सोनल परी पूरी तरह से परेशान हो गई थी। वो समझ चुकी थी कि जरूर काली परी इस वक्त यहाँ क्या करने के लिए आई होगी, और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अक्षत को तीसरी बार उसके साथ जिस्मानी रिश्ता बनाने से आखिरकार कैसे रोके, क्योंकि सोनल परी समझ चुकी थी जैसे कि काली परी ने पिछली बार अमन को अपने वश में कर लिया था, उसके साथ रिश्ता बनवाया था, कि इस बार भी वो ऐसा ही कुछ करने वाली है। तो इसीलिए सोनल परी ने अपने नृत्य की स्पीड बढ़ा दी थी और वो दिल से नृत्य करने लगी थी, और उसकी आंखों से मोटे मोटे मोती बह रहे थे, क्योंकि वो समझ चुकी थी अगर तीसरी बार काली परी ने अक्षत के साथ रिश्ता बना लिया तो अक्षत की उसी पल मौत हो जाएगी और फिर अक्षत कभी भी ठीक नहीं हो पाएगा। इसीलिए सोनल परी नहीं चाहती थी कि अक्षत को कुछ भी हो, और वो जल्द से जल्द अपने कुलगुरु को प्रसन्न करना चाहती थी, लेकिन कुलगुरु कहीं दूर दूर तक भी दिखाई नहीं दे रहे थे। और सोनल परी इस तरह से अपना कड़ा तप करते रही थी। तब तक एक लड़की को अपने पास देखकर अक्षत ने उसे कहा था, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? तभी वो लड़की यानी काली परी अचानक कहने लगी थी, मैं एक गरीब बेसहारा लड़की हूँ जो कुछ गुंडों से अपनी इज्जत बचाते हुए यहाँ इस बगीचे में आ चुकी हूँ, तो प्लीज मेरी मदद कीजिए। ऐसा कहकर वो लड़की अक्षत से मदद की गुहार लगाने लगी थी और अक्षत को कहने लगी थी कि अगर उसे यकीन नहीं आ रहा तो वो उसकी आंखों में देख ले। उसकी आंखों में उसे सच्चाई साफ नजर आई थी। वो जानबूझकर अक्षत का ध्यान अपनी आंखों की ओर करना चाहती थी ताकि वो अपनी आंखों से अक्षत को अपने वश में कर सके। अब अक्षत का ध्यान उस वक्त सिर्फ और सिर्फ सोनल परी पर था जो कि उसके ठीक सामने नृत्य कार्यक्रम कर रही थी। और वो उस लड़की को नहीं देखना चाहता था। लेकिन वो लड़की बार बार अक्षत को फोर्स करने लगी थी कि वो उसकी ओर देखता रहे, क्योंकि उसकी आंखों में उसे सच नजर आ जाएगा, वो उसे झूठ नहीं कह रही है। अब जैसे ही अक्षत ने उसकी आंखों में देखा और अचानक मौका देखकर जल्दी ही काली परी ने अक्षत को अपने वश में कर लिया था और मन ही मन में हंसने लगी थी कि अब सुहाने खूबसूरत हरे भरे बगीचे में वो अक्षत के साथ अपना तीसरा और आखिरी रिश्ता आगे बढ़ाएगी। अब सोनल परी पूरे दिल से रो रही थी, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि अगर आज कुलगुरु प्रसन्न नहीं हुए तो वो अब हमेशा हमेशा के लिए अपनी मोहब्बत को खो देगी। वहीं दूसरी ओर तारा परी अपने कमरे में उदास बैठी हुई थी। तभी अमन उसके पास गया था और कहने लगा था, क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रही हैं। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि जब से अमित का सच आपकी आंखों के सामने आया है, तब से आप बहुत ही ज्यादा खोई खोई उखरी उखरी सी हैं, और आपने खुद को भी परी बताया है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार आपको हो क्या गया है। तभी तारा अमन की ओर देखकर कहने लगी थी, अमन सर आप फिक्र ना करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो करिश्मा मॉम ने मुझे बताया कि अगले 7 दिनों के अंदर अंदर हमारा जिन अंश हमारे पास आने वाला है। जैसे ही तारा ने ये कहा, अमन मुस्कुराने लगा था और खुशी से उसने अपनी खूबसूरत बीवी तारा को अपनी गोद में उठा लिया था और उसे लेकर गोल गोल घूमने लगा था और कहने लगा था, तुम नहीं जानती तुमने मुझे मेरी जिंदगी की कितनी ज्यादा बड़ी खुशखबरी दी है। मुझे कब से अपने जिन अंश के आने का इंतजार है। तुम देखना, मैं अपने जिन अंश को इतना ज्यादा शक्तिशाली बनाऊंगा, इतना ज्यादा शक्तिशाली बनाऊंगा कि कोई भी काली शक्ति उसके आसपास नहीं टिक सकेगी। अब जैसे ही तारा ने अमन की बात सुनी, वो उसकी ओर देखकर कहने लगी थी, अच्छा लेकिन अगर मैं आपसे एक सवाल करूं तो क्या आप मुझे उसका जवाब देंगे। अब जैसे ही तारा ने ये कहा, अमन उसकी ओर देखकर कहने लगा था, कौन सा सवाल, आखिरकार क्या जानना चाहते हैं आप। और वैसे भी मैं काफी दिन से देख रहा हूं कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो आपके मन में इस वक्त चल रहा है। तभी तारा ने अमन का हाथ
पकड़ लिया था और कहने लगी थी, कहीं ऐसा ना हो कि जिन्नंश पैदा होने के बाद हम दोनों आपसे जुदा हो जाएं। अब जैसे ही अचानक से तारा ने ये कहा, अमन पूरी तरह से पत्थर के जैसा जम गया था और तारा, जो कि इस सवाल का जवाब जानना चाहती थी कि जब वो जिन्नंश को परिलोक में लेकर चली जाएगी तब अमन का क्या होगा और अमन किस तरह से बर्दाश्त करेगा, तो कहीं ना कहीं तारा ये जानना चाहती थी। और जैसे ही तारा ने अमन की ओर देखा तो उसके होश उड़ चुके थे। अमन का पूरा चेहरा एकदम लाल हो चुका था और उसके खून के आंसू उसकी सफ़ेद शर्ट पर गिरने लगे थे, जिसकी वजह से उसकी शर्ट भी धीरे धीरे पूरी लाल होने लगी थी। अब तो तारा परी पूरी तरह से डर गई थी और उसने तुरंत अपने पहने हुए दुपट्टे से ही अमन के चेहरे को पोंछना शुरू कर दिया था और कहने लगी थी, ये खून, इतना सारा खून कहाँ से आया। तभी तारा को एहसास हुआ था कि जिन जब भी रोते हैं तो उनके खून के आंसू निकलते हैं। तब तारा समझ चुकी थी कि उसके इस सवाल से अमन का दिल इतना ज्यादा दुखी हुआ कि वो रोने लगा। पर तारा सोचने लगी थी, क्या ये वही अमन सिंह राठौड़ है जिसके अंदर दिल था ही नहीं और वो इतना ज्यादा पत्थर दिल था, और अब अचानक से उसके इस तरह से एक सवाल करने पर वो बच्चों की तरह रोने लगा। तो कहीं ना कहीं तारा को काफी ज्यादा हैरानी हुई, साथ साथ उसे बहुत ही ज्यादा दुख भी पहुंच रहा था और वो समझ चुकी थी कि जब वो परलोक चली जाएगी, वो भी जिन्नंश के साथ, उसके बाद अमन की क्या हालत होने वाली थी। तभी तारा पूरी तरह से तड़प गई थी और उसने आगे बढ़कर अमन को गले से सगा लिया था और कहने लगी थी, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी अमन सर, आप इस तरह से, आपने क्या कर लिया खुद को, आप इस तरह का बर्ताव कैसे कर सकते हैं, ऐसा कहकर वो अमन को डांटने लगी थी। तभी अमन ने आगे बढ़कर अपने होठों को तारा के होठों पर रख दिया था। इस वक्त वो बहुत ही ज्यादा दर्द में था और उसका दर्द अगर अब कोई दूर कर सकता था तो सिर्फ और सिर्फ तारा का खूबसूरत जिस्म ही था। तो इसीलिए अब तारा अमन का साथ देने लगी थी। वो समझ चुकी थी कि अमन इस वक्त कितना ज्यादा दर्द में है और इसीलिए उसने उसे मना नहीं किया था। और जल्दी ही अमन के हाथ तारा के पूरे जिस्म पर चलने लगे थे और अमन की पूरी शर्ट, जो कि उस वक्त खून में हो चुकी थी, तारा ने आगे बढ़कर उसे उतार दिया था। और जल्दी ही अमन का खूबसूरत चौड़ा सीना उसकी आंखों के सामने मौजूद था और वो उसे किस करने लगी थी। तभी अमन ने तारा को अपनी गोद में उठा लिया था और सीधा बेड पर ले गया था और वहां पर उसके होठों को एक बार फिर उसने अपनी गिरफ्त में ले लिया था। तारा परी के होठ एकदम लाल सुर्ख थे। वो अपने चेहरे पर किसी तरह का कोई मेकअप या लिपस्टिक वगैरह अप्लाई नहीं किया करती थी। उसकी स्किन अपने आप में ही एकदम मलाई के जैसे थी, बेहद सॉफ्ट और एकदम सफेद, जिसकी वजह से अमन को ऐसा लगता था मानो कि वाकई वो किसी परी के साथ रिश्ता बना रहा हो। वेल, तारा के होठों का कितनी देर तक रसपान करने के बाद वो कहने लगा था, कभी कभी तो मेरा दिल करता है कि तुम्हारी परी वाली बात पर यकीन कर लूं, क्योंकि तुम हो ही इतनी खूबसूरत, एकदम परी के जैसी। ऐसा कहकर जल्दी ही उसने तारा की नाभि पर किस करना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे उसके कपड़ों को भी उसके जिस्म से अलग करने लगा था। तारा भी उस वक्त अमन को पूरी तरह से अपना बना लेना चाहती थी। उसने भी किसी तरह की कोई नानुकुर नहीं की थी और अमन थोड़ा सा जल्दबाजी करते हुए अपने पूरे होशो हवास के साथ उसने तारा परी के साथ जिस्मानी रिश्ता बनाना शुरू कर दिया था। और तारा परी अमन के इस तरह से प्यार पाकर भाव विभोर हो उठी थी और मन ही मन में सोचने लगी थी कि जब वो अमन की जिंदगी में नहीं रहेगी तब उसके साथ क्या होगा, क्योंकि इस वक्त तारा के कंधों पर परी लोक की पूरी जिम्मेदारी थी। एक बार को अगर परी लोक की जिम्मेदारी उसके कंधों पर नहीं होती तो वो आसानी से अमन के साथ एक इंसानी जीवन चुन सकती थी, लेकिन अब उसके पास कोई चॉइस नहीं थी क्योंकि पूरे के पूरे परीलोक का भार सिर्फ और सिर्फ तारा परी के कंधों पर था और वो इस तरह से अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकती थी। वेल, उस वक्त तारा ने अपनी सोच को झटक दिया था और आगे बढ़कर अमन का साथ देने लगी थी, क्योंकि इस वक्त वो अमन के प्यार में पूरी तरह से डूब जाना चाहती थी। वहीं अमन, जो कि काफी दिनों से शादी, भागदौड़ और सबके चक्कर में तारा के करीब नहीं आया था, और वो केवल उसके करीब तब आया था जब उसे काली शक्तियों के मालिक अमित ने अपने किसी दानव के द्वारा उसे वश में करने की कोशिश की थी। तब से अब वो अपनी प्यारी बीवी तारा के साथ बड़ी ही मोहब्बत और प्यार के साथ रिश्ता बना रहा था। और क्या वक्त रहते सोनल परी अक्षत खुराना को बचा पाएगी, और क्या अमन तारा के मन की बात समझ पाएगा, या फिर तारा बिना बताए अमन को उसके अंश को लेकर परलोक चली जाएगी? जानने के लिए बने रहेंगे दोस्तों।